ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वशक्तिवान बाबा के सर्व शक्तियों से संपन्न प्रसन्न चित्त सदा खुशी के झूले में झूलने वाले आदरणीय राजयोगिनी तपस्विनी वरिष्ठ ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी दीदी जी का, जो हमारे कर्नाटका के डायमंड शेर है, शंख ध्वनि करने वाले सरस्वती है और ज्ञान और गुण शक्ति और खजानों का दान करने वाले श्री लक्ष्मी देवी है। हम आप सब के तरफ से, विशेष कर्नाटक के भाई बहनों के तरफ से, हृदय से दिल से हम स्वागत करते हैं आपका। अभिनंदन है, वंदन है, शुभकामनाएं शुभ भावनाएं हैं। आप ईश्वरीय ज्ञानमय जीवन को अपनाते हुए 58 वर्ष हुए हैं। बेंगलुरु से ज्ञान के बीज को धारण कर मैसूर कर्नाटका तथा केरल के विभिन्न जिलों में सेवा का विस्तार किया है तथा विदेशों में भी आपने ज्ञान का प्रसार किया है। आप पॉलिटिकल विंग के चेयरपर्सन हैं। महिला सशक्तिकरण में आपने प्रमुख पात्र निभाया है, इसलिए आपको रानी कित्तूर चेन्नम्मा अवार्ड से आपको सम्मान किया गया है। जोरदार तालियां। लक्ष्मी दीदी जी, आप है दिव्य चरित्र की खान, रूहानी स्नेह देते हमें, मातृत्व स्नेह की पालना देने वाली, सदा हर्षित रहने वाली। आप वर्तमान समय में मैसूर सब जोन के डायरेक्टर है, गुजरात के दी एसोसिएशन ऑफ एजुकेटर्स वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन आपको शांति पारितोषक प्रशस्ति देकर सम्मानित किया गया है। कैलिकट में द लेडी ऑफ स्पिरिचुअल एक्सलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी, आज विधि द्वारा सिद्धि की प्राप्ति इस विषय पर प्रकाश डालेंगे हमारे मीठी प्यारी दीदी लक्ष्मी बहन जी। ओम शांति।
ओम शांति। विश्व कल्याणकारी बाप दादा, इस ऐश्वर्य विश्वविद्यालय को 90 इयर्स से विधि पूर्वक चला रहे हैं। जो बाप दादा ने विधि विधान इस ऐश्वर्य विश्वविद्यालय के लिए रचा है, उसको हमारे आदरणीय पूजनीय दादियों ने अपने जीवन में धारण कर विश्व भर सेवा करके हमारे सभी विश्व के भाई बहने जो ब्राह्मण जीवन अपनाया है, उन सबको विधि विधान सिखाए हैं। आज भी बाप दादा हर रोज हमको विधि विधान सिखाने की शिक्षाएं दे रहे हैं। हमारी विधि है ब्रह्मा बाप समान बनने का। ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए हमें कौन सी विधि को अपने जीवन में अपनाना है जो स्वयं ब्रह्मा बाप ने प्रैक्टिकल में उस विधि पूर्वक चल के दिखाए हैं। और दूसरा, हमें शिव बाबा को विश्व में प्रत्यक्ष करना है। ये हमारी सिद्धि है। जो बाबा हमेशा कहता ब्रह्मा कुमार कुमारिया तो प्रत्यक्ष हो गए, लेकिन परमात्मा आ गया है मेरा बाबा, ये दुनिया के आत्माओं के मुख से नहीं निकला है ना पहचाना है। तो इसलिए अभी इस अंतिम समय में हम सभी विधि विधान को धारण करके सिद्धि बाप दादा को प्रत्यक्ष करने की सेवा करनी है। भक्ति मार्ग में भी कहा जाता, जो विधि स्वरूप हर कार्य करते हैं उनको सिद्धि अवश्य मिलता है। तो बाबा ने हम बच्चों को अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी विधि विधान हमें बताया है, तो हमें अपने आप को पूछना होगा क्या उस विधियों के रूप में हमारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दुनिया वाले पूछते हैं अभी तक 90 इयर्स हो गया, ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाने से क्या मिलता है, क्योंकि हम लोग ब्रह्मा कुमार कुमारिया जो संगम युग के ब्राह्मण हैं, उनके जीवन में विधि सिद्धि रूप में दुनिया वालों को नहीं दिख रहा है। इसलिए हमारा जीवन ही आधार है, विधि से सिद्धि का अनुभव करके, हम खुद अनुभव करके दुनिया को अनुभव कराना है। तो सबसे पहले हम अपने आप को जांच करें, अमृत वेले हम लोग विधि पूर्वक उठते हैं, योग करते हैं और बाबा की मुरली सुनते हैं, तो ये क्वेश्चन अपने आप से पूछने से भी हमारे अंदर उत्तर निकलता, ये पूरी रीति से नहीं, कभी करते कभी नहीं करते, उसके लिए बहुत बहानाबाजी है। हम लोग कहते हैं अभी हमारा तबीयत ठीक नहीं है, हम इतना जल्दी नहीं उठ सकते हैं, या मधुबन में कहे हमें बहुत ठंडी है, अनेक अनेक बातें बहाना करके हम विधि बाबा ने जो सिखाया उससे वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए हमें जो चाहते हैं हमारे जीवन में सिद्धि, वो हमें प्राप्त नहीं हो रहे, कैसे होगा, विधि से नहीं चलते तो सिद्धि या सफलता कैसे मिलेगा। विधि माना ही विधान है, सिद्धि माना ही सफलता है। तो सबसे पहले हमारे विधि है अपने संकल्पों के ऊपर ध्यान देना। जैसे सारे विश्व को मालूम है विश्व शांति स्थापन कर रहे हैं, करने का एम है, लेकिन विश्व शांति स्थापन करने लिए जो निमित्त है उनके मन में शांति सदा काल के लिए है। तो ब्राह्मण जीवन में सभी का ये उत्तर निकलता सदा नहीं है, बाबा भी चाहते, बच्चों से कई बार हाथ उठाते, हम थोड़ा थोड़ा उठाते, कभी उठाते कभी नहीं उठाते, क्योंकि हमारा एक रस नहीं है, हमारा जीवन में शांति सदा काल के लिए नहीं है, हर दिन सुबह से रात तक भी नहीं है। तो क्या कारण है, अगर हमारा जीवन में शांति का अनुभव सदा काल का हो जाए तो उसके लिए कुछ प्रयास निरंतर करना होगा। निरंतर हमें बाबा जो इतना रोज ज्ञान की शिक्षाएं दे रहे हैं उसको मनन चिंतन करना, सर्वश्रेष्ठ चिंतन ज्ञान चिंतन। ज्ञान का चिंतन अगर हम करें तो उसका स्वरूप शांति स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। और बार बार हमें मन में ये संकल्प याद रखना उठाना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। इस श्रेष्ठ संकल्प को भी हम मन में चलाते रहेंगे, जैसे कोई डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हूं, मैं फलाना पद वाला हूं, उसको याद रहता है, जिस कारण उनका वो स्वरूप उसके जीवन में दिखता है। ऐसे ही हम ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों को भी हमारे मन में मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, यह हर वक्त हमारा ये पोजिशन है, हमारा मन की स्थिति है, इसको याद रखना, उसको पक्का करना हमारा मन में, जिससे हमारा मन के संकल्प भी शुद्ध हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। मन क्या, हमारा तन का जो भी कर्मेंद्रिया है वो भी शांत और शीतल हो जाएगा, और हमारा वातावरण, आसपास का वातावरण वो भी शुद्ध हो जाएगा, शांतिमय हो जाएगा। बाबा के बच्चों को जहां भी जाते हैं उनको शांति दूत कहा जाता, चाहे ऑफिस में जाए, चाहे घर में रहे, व्यापार करे, खेती में जाए, कहां भी रहे, शांति सागर के बच्चों का स्वरूप, शांति स्वरूप ये सब जगह फैलाना है, शांति का वाइब्रेशन देना है। आज दुनिया में और क्या चाहिए मनुष्य को, धन दौलत सब कुछ है, शांति नहीं है। भक्ति करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, अल्पकाल के लिए अनुभव होता, सदा ही मांगते रहते शांति का भीख। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को ये विधि सिखाया, आप बच्चों का प्रैक्टिकल जीवन, आपका चलता फिरता जीवन ये शांति का सबको अनुभव करावे। ऐसे ही ये शांतिमय जीवन अनुभव करने के लिए हमारे जीवन में वैराग्य चाहिए। वैराग्य को धारण करने के लिए बाबा ने घर गृहस्थ को छोड़ने के लिए नहीं बोला। साधु संत वैराग्य धारण करके घर गृहस्थ को छोड़े हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर वैराग्य कहाँ है, सीमित है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को सारे एक घर का, एक संबंधियों का, सदस्यों के ऊपर वैराग्य नहीं, वस्तु वैभवों के ऊपर वैराग्य नहीं, सारे विश्व के ऊपर हमारा वैराग्य होना चाहिए। विश्व के अंदर जो भी वस्तु वैभव व्यक्ति दृश्य देखते हैं, इन चीजों से हमारा कोई आकर्षण नहीं है। हमें बाबा ने विश्व परिवर्तन करने के लिए निमित्त बनाया, तो हम स्वयं को पहले परिवर्तन करें, जिससे विश्व परिवर्तन के कार्य में हम निमित्त है उसका विशेष हम जिम्मेदार होंगे वैराग्य वृत्ति धारण करने का। वैराग्य वृत्ति जीवन गृहस्थ जीवन में ऐसा है, वैराग्य माना एक कपड़ा है, और गृहस्थ माना एक कांटों का झाड़ है। आप कपड़ा धुलाई करते कांटों के जड़ के ऊपर सुखाते हैं, लेकिन उसको निकालने के टाइम बहुत सावधानी से निकालते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कांटे से धीरे धीरे ध्यान देके निकालना होगा, नहीं तो वो फट जाएगा। इसी तरह गृहस्थ में रह के, गृहस्थ एक कपड़ा है, ये कांटों के जाड़ के ऊपर जो कपड़ा है वो गृहस्थ जीवन है, उसमें हमारा वैराग्य होगा, जीवन वैराग्य होगा, तो हम धीरे धीरे वैराग्य भी बाबा की याद से होगा, बाबा की शक्ति से, क्योंकि ग्रस्त वाले अपने बाल बच्चों को, अपने धन दौलत को इतनी सहज उसे नष्ट मोह नहीं बन सकते। बाबा ने हम बच्चों को पहले आते ही ये लेसन सिखाया, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, उसके लिए ही हमारा सारा जीवन में इस ज्ञान को धारण करना होगा। हम कितना नष्ट मोह बने हैं, वैराग्य से हम खुद अपने शरीर के ऊपर नष्ट मोह है, तो संबंधियों के ऊपर भी हम नष्ट मोह बनने में कोई तकलीफ नहीं होगा। हमारे शरीर के ऊपर अटैचमेंट होगा, ममत्व होगा, इसके लिए साधना, साधनों की आधार होगा, तो हम दूसरों को कैसे न, दूसरों से अपने उनका संबंधों के बंधन से छूट सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा है, देह से देह के सब धर्मों को छोड़ मामे कम याद करो। जब तक सब कुछ भूल करके बाबा को याद नहीं करते तब तक वो शक्ति हमें नहीं मिलता, हम सहज ये कर्म बंधन, गृहस्थ बंधन, ये दुनिया का बंधन, वस्तु वैभवों का बंधन, शरीर के बंधन से छुटकारा नहीं पा सकते। और सच्ची प्रीत बाबा से लगे रहेगा, भगवान के साथ प्रीत, वो आत्मा शक्तिशाली होगी, क्योंकि हम 63 जन्म से मनुष्यों के साथ प्रीत का संबंध जोड़े हैं। उनसे क्या मिला है? अल्पकाल का प्यार और स्वार्थ प्यार। परमात्मा के संबंध में मनुष्यों का प्यार हमें पापों का बोझ चढ़ाया है, लेकिन परमात्मा का प्यार पापों का बोझ से उतारना है, उतारते हैं। जितना हम बाबा का प्यार का अनुभव करेंगे और सदा काल करेंगे, निरंतर करेंगे, उतना हम बहुत हल्के होंगे, न्यारे प्यारे होंगे, सबके साथ रहते हुए भी सबसे न्यारे होंगे और सबके साथ प्यारे होके चल सकेंगे। कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा। तो ये सच्ची वैराग्य वृत्ति बाबा ने हमें सिखाया। ऐसे वैराग्य वृत्ति को धारण करने के लिए परमात्मा का प्यार और अच्छी तरह बाबा ने कई बार हमको बोलते हैं मुरली में, बच्चे मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे पहचानो। भक्ति मार्ग में भगवान माना, देवताओं को भी मिला के भगवान समझते हैं, प्रकृति को भी मिला के भगवान समझते हैं, पत्थर बित्तर टिक्कर सब में भगवान समझते हैं, तो उनका कोई प्यार परमात्मा के साथ जुड़ नहीं सकता। हमारा प्यार डायरेक्ट परमात्मा के साथ जुड़ जाए, उसके लिए हमें भी बाबा का पहचान होनी चाहिए। यथार्थ से नाम गुण कर्तव्य रूप, क्योंकि कई बार बाबा के बच्चे भी बाबा से कई बातों को मांगते रहते हैं, बाबा हमें तबीयत तमारा हेल्थ मुझे हेल्थ दियो, हमें निरोगी बनाओ, हमारे बाल बच्चों को बनाओ। जैसे भगत लोग भगवान को याद करते मांगते रहते रोज, इसी तरह बाबा के बच्चे भी करते हैं, जिस कारण उनके अंदर परमात्मा का प्यार का अनुभव नहीं होता, परम पवित्रता का पवित्रता की शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते और अपने बोझ को नहीं उतार सकते। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को परमात्मा का सच्चा प्यार का अनुभव करने के लिए, परमात्मा को पहचान करके, उसके पहले खुद को पहचान करके, क्योंकि हम समझते हैं हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, दूसरों को दिखाते हैं, दूसरों को नहीं टग रहे हैं, हम खुद के लिए टग रहे हैं, हम सच्चे दिल से पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। तो हमारा मन में वो जो हमने किया है, हम कर रहे हैं, वो कंटेंटमेंट, वो तृप्ति, वो संतुष्टता हमारे अंदर नहीं है। जिसके मन में संतुष्टता होगी वो कभी मांगते नहीं है, जो चाहते चाहिए चाहिए चाहिए, वो चाहिए ये चाहिए, तो उसको गरीब कहा जाता। जो कुछ इच्छा मात्रम अविद्या होकर के कुछ भी वस्तु वैभव की आकर्षण नहीं है, अभाव नहीं है, मैंने जो पाना था वो पा लिया, वो समाधान है, परमात्मा का पवित्र परम पवित्रता की सुख प्राप्त कर लिया है, वो कहते हैं हमको कुछ भी नहीं चाहिए, जो पाना था वो पा लिया, भगवान मिला तो सब कुछ मिला। तो वो आत्मा जो नहीं चाहते हैं वो बस साहूकार है, जो चाहते हैं वो गरीब है। तो हम अपने आप को जांचना होगा, देखना होगा, हम अभी तक बाबा के बच्चे बने के बाद भी गरीब होके चल रहे हैं या साहूकार होके चल रहे हैं। बाबा ने अभी अभी मुरली में बताया था, आप लोग बोर्ड लगाओ, घर घर में बोर्ड लगाओ, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में गरीबों को साहूकार बनाया जाता। तो वो ब्रैकेट में वो भी लिखना, स्थूल रूप से नहीं, मन के रूप से, मन को शक्ति देते, मन को गुणों की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, परमात्मा की शक्ति मिलते हैं, जिसे जो भीख मांग रहे हैं, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, सुख चाहिए, वो गरीबी तन गरीबीपन मिटा करके अपने जीवन में संतुष्टता को प्राप्त करते हैं। इसलिए कहा जाता है कंटेंट्स आर रिच, डिसकंटेंट्स आर पुअर। जो संतुष्ट है वो अगर्भ साहूकार है, श्रीमंत है, जो असंतुष्ट है वो बहुत गरीब है। तो बाबा के बच्चे ईश्वरीय विश्वविद्यालय साकार बाबा ने जब स्थापन किया तभी दुनिया में मशहूर हो गया था ब्रह्मा कुमार इज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, वो टाइटल बाबा अभी भी हमारे जीवन में स्थापित किया है। सभी दुनिया वाले अनुभव करें ये ब्रह्मा कुमार कुमारिया उनका जीवन रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। स्थूल पैसे से नहीं, जिनके पास भी बहुत पैसा है, आज हम रोज देखते हैं उनको पकड़ा जा रहा है, चाहे बड़े हो, बड़े पोजीशन वाले हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी रीति से। तो बाबा ने हमारे पास ऐसा ज्ञान का धन दौलत दिया है, वो किसी को भी देने से उनका जीवन बंधनों से छूट जाता, उनका साहूकार बन जाता। बाबा के बच्चे देखिए, जब मधुबन में आते इतना खुशी से आते हैं, वो कितना भी गरीब बाबा के बच्चे हैं, मधुबन के लिए कितनी तैयारी करके खुशी खुशी से आते हैं, और मधुबन से वापस जाने के टाइम भी यही अनुभव करते हैं, हमने सब कुछ पा लिया। पार्टी के कई माताएं भाई बहनों ने मुझे फोन किया, बहन जी कल बाबा आया था ना, हमने बहुत अच्छा अनुभव किया, हम जहां भी बैठे थे बाबा ने हमारी मनो इच्छा पूरा किया, हमें अनुभव कराया, हमें संतुष्टता हुई। ये केवल एक दिन बाबा के मिलन के दिन नहीं है, हमारा हर दिन बाबा के मिलन के लिए हमें प्यासे होकर के रहना है। सुबह सुबह उठते ही बाबा के मिलन के लिए, अमृत वेले योग के लिए वो प्यास अंदर से निकलना है, दौड़ के जाके बाबा के पास बैठना है। तो इसलिए हमें बाबा से इतना प्यार खींचना है, हमारा जीवन में जो चाहे सब कुछ बाबा से प्राप्त है। इसके लिए बाबा ने कई युक्ति बताया, बाबा ने ये कहा है स्वमान में रहो, एक एक स्वमान को धारण करो अपने जीवन में। जैसे मैं आत्मा स्वदर्शन चक्कर जा रही हूं, स्वदर्शन चक्करदारी पांचों युग में हमारा जीवन, मेरा जीवन का दर्शन का अनुभव करते हैं। तो पांचों युगों में हमारा ऑलराउंड पार्ट है, तो हमारा इस सृष्टि ड्रामा में कितनी ऊंची पार्ट है, जो हीरो होते हैं वो आधे से अंत तक पार्ट बजाते हैं। बाबा ने हमारे जीवन का पार्ट, हीरो पार्ट तो कैसे बजाना है, जो 90 इयर्स से आए हुए बाबा के बच्चों को भी चांस है, और अभी अभी आए हुए बच्चों को भी चांस है, कोई भी ऐसे हीरो पार्ट बजा सकते हैं, ऑलराउंडर बन सकते हैं, बाबा से डायरेक्ट संबंध जुड़ सकते हैं, बाबा से सर्व प्राप्ति कर सकते हैं। वो आत्माएं दुनिया के आत्माओं को एक आत्मा से मुक्ति, एक अंग से मुक्ति, दूसरे अंग से जीवन मुक्ति का दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते हैं। देखिए ज्ञान मार्ग में बाबा की दृष्टि में कितना पावर है, सभी एकाग्र चित्त होकर के बाबा की दृष्टि को देखने के लिए, बाबा से मिलने के लिए दृष्टि द्वारा तरसते हैं, उसे लगन से बैठते हैं। ऐसे हमारे दादियों की दृष्टि भी, दादियों ने बाबा को अपनी दृष्टि में, अपने मन में बसा लिया था, इसलिए उनकी दृष्टि में इतना पावर था, वो जहां भी जाए, मधुबन में आए चाहे कोई जोन में जाए दादियों की दृष्टि लेने के लिए, भाई बहने माताएं सभी बहुत तरसते थे। एक बार मुझे याद है दादी जानकी मैसूर में आई थी। दादी को संतों के प्रति बहुत प्यार। दादी ने बोली थी आप संतों को बुलाओ तो मैं आऊंगी। उस समय संत लोग 2000 आए थे, बीके भाई बहन 5000 आए थे। वो उनका बड़ा पंडाल डाल के प्रोग्राम किए थे। पहले बीके तो सुबह से आके बैठ जाते, दादिया माना कहाँ से भी बिना बोल के भी आ जाते हैं, वो भी हमारे कर्नाटक से विशेष है, इतना प्यार दादियों के साथ। और दादी पहले संतों को आह्वान किया, एक एक संत सौ सौ को अपने साथ लेके आ रहे थे। दादी बोली पहले मैं संतों से मिलूंगी। इतने घंटों पर बैठ गई दादी। हम बोल रही हूँ दादी शाम का प्रोग्राम है, आप भी आए हैं, थोड़ा 5 मिनट मिलके चलिए, आप तैयार होके भोजन करके फिर बड़े प्रोग्राम में आना है। दादी बोलते चुप रहो, मुझे संतों से मिलना है। संतों से मिलके दादी 11 बजे से लेकर 1 बजे तक को मिली दादी। फिर बाद में भाई बहनों के पास सभी दादी बोलती है, मैं बोली दादी अभी आप जाओ तैयार हो के आओ, बाद में मिलेंगे। बोलती है नहीं मेरे लिए बैठे हैं ना, मैं पहले उनसे मिलके जाऊंगी। दादी सभा में आकर के बीके भाई बहनों को दृष्टि दे के क्लास कराई। फिर हमने बोला दादी अभी भी बहुत देर हो गया, आपने सब कुछ किया, आप जाइए, हम लोग आपको आपके तरफ से टोली दे देंगे। दादी बोलती है नहीं मेरे कोई टोली देना, मेरे साथ बाबा है, मामा है, गुलजार दादी है, प्रकाशमणी दादी है। देखिए दादियों का कितना लगन, और 5000 लोगों को टोली देना कितना देर होता है, टाइम कहाँ है। तो फिर दादी को बोले दादी आप दृष्टि दियो हम लोग टोली देंगे। फिर थोड़ी देर के बाद फिर हम बोले दादी जाओ, दादी कहते नहीं मैं सबको दृष्टि देंगे। वो हमारी भाई बहन भी कितना नाजुक है, वो लोग इतना दृष्टि लेके सीधा जाना है ना, एक पल्ला दूर जाते हुए भी पीछे पीछे दादी को देखते रहेंगे, लाइन आगे नहीं जाएगा। इतना दादी की दृष्टि में पवन, इतना आकर्षण, कितना भी मना करे सुनते नहीं है। वो पवित्र दृष्टि दादी ने बाबा को सारे विश्व में दिखाई, बाबा को दिखा के आए, प्रत्यक्ष किया, 147 देशों में प्रत्यक्ष करके अभी भी बहने कर रही है। दादी के द्वारा जो सेवा हुई है उसको बढ़ा रही है। लेकिन दादियों ने इतना उनके अंदर पवित्रता की शक्ति, बाबा की शक्ति, दादियों के कारण ही अभी तक मधुबन में जो दादियों ने विधि विधान बाबा ने सिखाया था वो धारण करके उस विधि विधान को बनाया है, वो ही चल रहा है अभी भी। जब साकार में बाबा आता वो बात अलग है, अव्यक्त बाबा को देखने के लिए हमारी भाई बहन इतने दौड़ दौड़ के आते थे। मधुबन माना उस समय 4 प्रकार का, एक जगह दिलाना अच्छा जगह चाहिए, दूसरा है भोजन का पास दिलाना, तीसरा है बाबा का मिलन के लिए पास दिलाना, वो अभी तक भी चल रहा है। उस समय था चौथा स्टेज पर जाके बाबा से मिलना है। हम लोग तो इतना हैरान होते थे बाबा इनको कौन समझाएगा, इतने लोगों को कहाँ छोड़ेंगे, ये बंद होना चाहिए, हम लोग संभाल नहीं सकते इन भाई बहनों को। तो लेकिन उन दिनों में इतना भाई बहने बाबा से मिलने के लिए बाबा से दृष्टि लेने के लिए। एक जमाना था हम लोग पांडव भवन में बाबा से एक एक घंटा मिलते थे, ओम शांति भवन में कितना हम लोग ग्रुप अपने आप बाबा से मिला के बाबा का वरदान ट्रांसलेशन करते थे। बाबा को जैसे इन बच्चों का परिचय नहीं है ऐसा एक एक आत्मा का परिचय कराते थे। वो जमाना कैसे परिवर्तन हो गया। बाबा ने बोला था ऐसा समय आएगा, हम लोग ट्रांसलेशन भी करते थे एक एक, बाबा जब आता था मुरली चलाता था तीन भाषा में ट्रांसलेशन होती थी, एक कन्नड़ा में, एक तेलुगु में, एक मलयालम में, ओम शांति भवन में। बाबा की मुरली के बाद मिलन भी है सब। इतना सारा बाबा ने हम लोगों को पालना दिया, दादियों ने पालना दिया, ये जीवन का पवित्र जीवन का विधि विधान सिखाया, ये सभी हम लोगों को धारण करके याद रख करके हमारे जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जो हमने प्राप्त किया वो दूसरों को सुनाना चाहिए। दादियों से तो हम लोग बहुत कुछ प्राप्त किया है। एक बार दादी प्रकाशमणि बेंगलोर में आई, वहां पर एक बड़ा संत, क्योंकि उधर के दो तीन संत है वो भी बड़े दो संत, दादियां जो भी, चाहे गुलजार दादी जी आवे, चाहे प्रकाशमणि दादी जी आवे, चाहे गुज्जान की दादी आवे, उनका सारा प्रोग्राम बंद करके वो लोग आ जाते थे, जैसे बच्चे होकर के साथ में रहते थे। उनका एक बार कुछ एक जगत गुरु का उसका आश्रम में कोई प्राइम मिनिस्टर बहुत पैसा रखा था, उन्होंने मंदिर बना दिया, उसका एगेनेस्ट हो गया, वो जो प्राइम मिनिस्टर एगेनेस्ट हो गया उसने अलग उसका स्वामी जी के एगेनेस्ट में एक अलग संस्था छोड़ आश्रम खोल दिया। वो बड़ा कर्नाटक का बड़ा होने के कारण उसमें मन में बहुत अशांति दुख था, तो बड़ा प्रोग्राम बेंगलुरु योग भवन में चल रहा था, तो दादी ने भाषण करते हुए स्वामी जी को प्रश्न पूछा, स्वामी जी आप मेरे लिए कौन है? आप मेरा स्वामी जी है, मेरा भाई है, मेरा गुरु है, कौन है? तो स्वामी जी सब सुन रहा था। दादी भाषण करने के बाद स्वामी जी का जब वो टर्न हुआ भाषण का, उस समय बोलता है दादी, माता जी बोलते थे वो लोग, दादी नहीं बोलते थे, माता जी मैं ना आपका गुरु ना स्वामी हूं, मैं तो आपका बच्चा हूं। देखिए खुले दिल से बोलता है मैं आपका बच्चा हूं। जैसे उसने बोला मैं बच्चा हूं, दादी ने हाथ पकड़ लिया, प्रकाशमणि दादी उसका हाथ पकड़ ली। बच्चे को हाथ पकड़ा जाता है ना मां, आज प्रोग्राम के बाद हाथ पकड़ के सारा उधर जो जगह है बाबा के कमरे में ले गई, सारा दिखाई, उसके बाद भोजन पर आए। तो उधर आने के बाद दादी ने एक भोजन खिलाने के समय उसको गिट्टी, दादी ने हम सबको गिट्टी खिला रही थी, वो स्वामी जी बच्चा हो गए ना, उसको गिट्टी खिलाने गई, तो स्वामी जी हम लोगों को देख रहे थे, हम लोग खिलाने खड़े थे, उसको देवबान तो आता है ना, तो हम लोग बाहर आए, पहले बच्चा गिट्टी काले हुए, फिर बाद में हम गए अंदर खिलाने लिए। वो इतना दादी के साथ उसको प्यार हो गया था, भोजन खिलाने के बाद खाने के बाद भी वो दादी का हाथ तो पकड़ के ही बाहर आया, कार में बैठने तक दादी का हाथ पकड़ा हुआ था। वो तीन चार बार मधुबन में आए हैं, एक बार नहीं, दादी ने उनको बहुत अच्छा संभाला है, उनको बहुत अच्छा देखा है, सारा पालना दिया है, वो लोग अभी तक जब भी आते थे दादियों की पालना सुनाते थे। ऐसे दूसरा जगत गुरु दादी को अपने पास एयरपोर्ट में जा रही थी तो बोला अपने आश्रम में आप विजिट करके जाना। तो दादी बोली कितने लोग आते हैं, वीआईपीस को भी उसने बुलाया था, 300 वीआईपीस आए थे। दादी के पास टाइम नहीं था, आधा घंटे में मिलना था। तो दादी ने बात करके संदेश देके फिर बोलती है, दादी ये जगत गुरु है ना, ये मेरा भाई है, वो उसका पाव पड़ना, मेरे से प्रसाद लेना, मेरा पाव नहीं पड़ना। वो गुरु जगत गुरु क्या समझेगा, वो तो रस्सा था दादी, क्योंकि उनका तो संप्रदाय है, रसम है, रसम रिवाज है, पाव सब लोग पाव पड़े पैसा डाले, ऐसा तो हमारे संस्था में नहीं है। बाबा शुभा बाबा कहते मेरा पाव भी नहीं चुना, मेरा पाव है ही नहीं तो भी कोई नहीं चुना। और दादिया सभी हमारे भाई बहन किसी कोई भी पाव नहीं चुनना, अभी भी बीके भाई बहन आके पाव चुनते, उनको पक्का ज्ञान नहीं है। तो इसलिए दादी लोगों ने विश्व में जो भी बड़े बड़े थे सबको परिवर्तन किया, केवल मैंने अपने पास जो बड़े जगत गुरु थे उनका अनुभव सुनाए। उनके अंदर इतना ताकत था क्योंकि बाबा की शक्तियां, बाबा का अनुभव, बाबा का ज्ञान का चिंतन, दादियों के मुख से कभी भी ज्ञान के अलावा और कोई शब्द नहीं निकलता था। ज्ञान ही सुनाना, बाबा का ज्ञान मुरली दादी 12 बार पढ़ती थी, ज्ञान की दादी हर रोज 12 बार पढ़ती थी। इसलिए दादी जनक बन गई, जब बाबा हमेशा जनक बुलाता था, दादी पहले नर्सेस की सेवा करते थे एग्जाम में पाकिस्तान में, वो ज्ञान सुनाते थे। ऐसे दादी इधर अभी तक लास्ट घड़ी तक कितना बार कमरे में मुरली पढ़ती थी, सारा दिन बार बार पढ़ती थी। वो ही हमारे बड़े भाइयों ने भी वही सीखा था दादियों से, निर्वैर भाई हमारा ब्रिजमोहन भाई, आशा बहन जान बहुत सुनाते थे, ब्रिजमोहन भाई भी सारा दिन मुरली बार बार पढ़ते थे। तो हम लोग ज्ञान का मनन चिंतन करने से अंतिम घड़ी तक बाबा की याद रहेगी, भले शरीर का कोई भी स्थिति होवे हम शक्तिशाली रहेंगे, सुदृढ़ होंगे, मन शांत होगा, खुशी भी होगा और बाबा की याद भी रहेगा और सेवा भी, बाबा कहता जो चाहे सेवा करो। बाबा अभी अभी बोला ना सेंटर्स खोलो, सेंटर्स भी खोलने के लिए तन मन धन से बाबा का दुनिया वालों से वायदा है, मैं किसी से पैसा नहीं लूंगा, स्पॉन्सर नहीं लूंगा, अपने बच्चों के तन मन धन से दुनिया को भारत को स्वर्ग बनाऊंगा, ये बाबा का वायदा। ऐसा कोई संस्था नहीं है जहां पर दूसरों के मदद के बिना संस्था चलाए, बाबा अपने बच्चों के द्वारा करा रहे हैं। हम शुरू से देख रहे हैं पांडव भवन इतना छोटा था, इतना बड़ा बना बाबा ने कैसे बनाया, ओम शांति भवन बनाया, उसके बाद बाबा ने ज्ञान सरोवर बनाया, दादी बड़ी दादी सभी जगह ले जाके दादी सबसे सहयोग लेती थी। माता है तो 5 रुपए 10 रुपए दादी के पल्लू में डालती थी, हम दादी को बोलते थे दादी आप ऐसा नहीं लियो हम लोग लेके देंगे, माताओं को हम लोग जोर से बोलते थे आप लोग दादी को ऐसा नहीं डालना, दादी बोलते चुप रहो, जो भी कना दाना मिलेगा प्यार से वही बनेगा सरोवर। इसलिए वो प्यार का तन से सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, वो सागर बना देगा। अभी देखिए कितना बड़ा हमारा प्रीवियस है सब जगह, इसको देखने के लिए टाइम कम है। जो भी आते इतना खुश होके जाते, इतना देख के जाते, कितना बाबा के घर में पहले कैसा था अभी कैसे है, ऐसे हमारा जीवन भी पहले कैसा था अभी कैसे है। अभी पहले कैसे हम लोग कमजोरी में पड़े थे, अभी कैसे कमी कमजोरी को निकालने का ध्यान दे के पुरुषार्थ कर रहे हैं, कैसे परिवर्तन हुए हैं, कितना गुण अपने जीवन में धारण किया है। तो ये सभी हमें जांचना होगा, कितना विधि विधान से बाबा ने सिद्धियां प्राप्त कराई है। तो जो सिद्धि पुरुष होते हैं हमेशा वो संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए आप सभी बाबा के घर में आए हुए भाई बहने विधि पूर्वक चल के सिद्धि पुरुष बन के माताएं भाई बहने सभी बड़े खुशी से जाके अनेक आत्माओं की सेवा करके अभी अंतिम समय है बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवा करनी है। बाबा की प्रत्यक्ष करने की सेवा सारे विश्व में कितने बड़े बड़े रूप से चल रही है उसका वर्णन भी अवर्णनीय है, सोच भी नहीं सकते इतनी सेवा सब जगह चल रही है उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। कोई एक आधा सुनाएगा तो सुन के खुश होंगे, लेकिन सारी दुनिया की सेवा कितनी हो रही है। तो ये बाबा कैसे चला रहे हैं, ये भगवान की सेवा है, भगवान का कर्तव्य है विश्व कल्याण करने का, उसके बच्चे हम मास्टर विश्व कल्याणी, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर शांति सागर, ये टाइटल बाबा ने हम बच्चों को दिया है। उस टाइटल को हम अपना बना करके अनेक आत्माओं का उद्धार करने के लिए हमें निमित्त बनना है। तो जितना हम सेवा करेंगे उतना दुआएं मिलेंगी, वो दुआएं हमारे लिए दवा हो जाएगी, हमारा जीवन सेफ्टी रखेगा। जैसे दवा खाते तो शरीर का सारा तबीयत ठीक होता, थोड़ा थोड़ा ठीक होता जाता, ऐसे आशीर्वाद या दुआ जितना सबसे लेंगे और हर रोज ये ब्राह्मण जीवन में भी एक दो के आशीर्वाद लेना आवश्यक है, किसी को दुख नहीं देने को है? आपस में घरों में कोई भी आपस में एक दो को दुख नहीं देवे, इतना हम अलर्ट रहे। हमारा जीवन को बाबा ने कैसे बनाया ये सभी निषेध है, हम किसी को दुख देना, किसी को डांटना, किसी को अशांत करना, किसी को समस्या लाना, ये सभी हमारा जीवन में निषेध है। तो ये सब हम याद रख करके हमारा जीवन को बहुत आगे बढ़ाने की और अनेक आत्माओं के कल्याण करने की संकल्प लेते हुए बाबा को, दादियों को और मधुबन वासियों को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करेंगे, धन्यवाद देंगे। ओम शांति।
दीप जला लो, यही ज्ञान का सार है, यही ज्ञान का सार है। चिंता छोड़ करो प्रभु चिंतन, दुख का ये आधार है, सुख का ये आधार है। भर लो अपने दिल का दामन, भर लो अपने दिल का दामन ईश्वर के गुणगान से। अंतर मन की प्यास बुझा लो राजयोग सद ज्ञान से, अंतर मन की प्यास बुझा लो राजयोग सद ज्ञान से। जीवन को ज्योतिर्मय कर लो, व्यर्थ न इसे गंवाना है, व्यर्थ न इसे गंवाना है। झूठे आकर्षण में मन को कहीं नहीं उलझाना है, कहीं नहीं उलझाना है। बदलो चिंतन की धारा को, बदलो चिंतन की धारा को रूहानी मुस्कान से। अंतर मन की प्यास बुझा लो राजयोग सद ज्ञान से, अंतर मन की प्यास बुझा लो राजयोग सद ज्ञान से। जीवन को ज्योतिर्मय कर लो। पट कर लो अपने अंतर का श्रृंगार, अपने अंतर का श्रृंगार। योग साधना के पथ पर चल, योग साधना के पथ पर चल। प्रीत करो भगवान से, अंतर मन की प्यास बुझा लो राजयोग सद ज्ञान से, अंतर मन की प्यास बुझा लो राजयोग सद ज्ञान से। जीवन को ज्योतिर्मय कर लो, जीवन को ज्योतिर्मय कर लो ज्योति बिंदु के ध्यान से। अंतर मन की प्यास बुझा लो राजयोग सद ज्ञान से, राजयोग सद ज्ञान से, राजयोग सद ज्ञान से, राजयोग।